ओम शांति। मधुबन में भट्टी करने का मौका मिलता है तो हमें यह परम सौभाग्य मिलता है कि हम जो मधुबन के गुप्त पुरुषार्थी होते हैं, मधुबन में बहुत सारे ऐसे मधुबन निवासी हैं जिन्हें आप स्टेज पे नहीं देखते होंगे लेकिन गुप्त पुरुषार्थी होते हैं, बाबा के अनन्य बच्चे होते हैं। तो ऐसी महान विभूतियों से सम्मुख मिलने का हमें एक सुनहरा अवसर मिलता है। ऐसी ही एक महान विभूति आज हमारे सम्मुख हैं, हमारे आदरणीय महेश भाई जी। हम सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का स्वागत करेंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब उन अनन्य रत्नों में से हैं जिन्होंने मम्मा बाबा की पालना ली है। आप 1964 में बाबा का आपको परिचय मिला और बाबा से आप दिल्ली में जब बाबा आए 65 में, उस समय आप साकार बाबा से सम्मुख मिले और उसके बाद आप मधुबन निवासी बन गए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पहले गिने चुने मधुबन निवासी होते थे। मैं बात कर रहा था जेपी भाई और शिव भाई से जो बहुत पुराने मधुबन निवासी हैं। उन्होंने बताया कि जब साकार बाबा थे तब तक केवल 10 भाई लोग समर्पित थे, है ना? लेकिन बाद में धीरे धीरे मधुबन में भाइयों की संख्या बढ़ी। तो आप ऐसे अनन्य रत्न हैं भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब को हमने देखा है पहले, जैसे बताया कि लोग कम होते थे तो लोग बहुत मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेवा करते थे। भाई साहब ने अकाउंट में भी सेवा की है, कंस्ट्रक्शन में भी सेवा की है, पहरे में भी सेवा की है, लोग फ्री टाइम में मूली में भी सेवा करते थे। तो भाई साहब को मैंने अकाउंट में सेवा करते हुए देखा है। बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, गुप्त पुरुषार्थी, ज्ञान योग दिनचर्या पे एकदम एक्यूरेट चलने वाले। तो आज हमारा सौभाग्य है भाई साहब, हम आपसे ज्ञान की चिट चैट करेंगे, साकार बाबा के साथ के अनुभव जानेंगे। तो भाई साहब मेरा पहला ही क्वेश्चन है कि आप बाबा से पहली बार बाबा से मिले, बाबा की पर्सनालिटी कैसी थी और मिलते ही आपको क्या अनुभूति हुई?
ओम शांति। हम जुलाई 64 में ज्ञान में आए और हमारे को ये सौभाग्य है कि हम 4-5 महीने बाद ही बाबा से दिल्ली में मिले। तो दिल्ली में बाबा से मिले तो बाबा ने उस समय फिर बोला कि बच्चे बाबा के घर आना। तो हमारे को लगन लग गई कि बाबा घर आए। तो फिर हम अप्रैल 1965 में मधुबन में आए और तब से फिर हम हर साल मधुबन बाबा से मिलते रहे। तो बाबा से मिलन में हमने जो देखा कि बाबा कितना जो है कि समदर्शी था। हम तो गांव के रहने वाले थे और हमारे को इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, शहर का भी कोई अद्भुत से नहीं अनुभव था। तो हम गांव में रहने वाले थे तो जब बाबा धोती और कुर्ता पहन करके आए तो बाबा ने इतना प्यार से पालना दी। 3-4 बार बाबा की उस समय जो मिलते थे तो बाबा की गोद में भी जाते थे, बाकी पहनते थे। तो 3-4 बार हमारे को चांस मिला बाबा के साथ बाकी पहनने का भी और बाबा के साथ खाना खाने का भी चांस मिला, बाबा के साथ सबसे लेन देन भी करने का चांस मिला। बाबा ने उसी समय हमारे को रिंग भी दिया, बैज भी दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा कितना समदर्शी था सबके साथ, गरीब अमीर गांव का शहर का उसके साथ बाबा ने कोई भार नहीं था और बाबा सबको एक प्यार से पालना देता था। तो वो हमने देखा पहले। और दूसरी बात है कि बाबा के जीवन से हमने ये देखा कि बाबा त्याग तपस्या और जैसे कि ट्रस्टीपन का प्रतिमूर्त था, संबल था। जो संपूर्णता जो देखी जाए त्याग तपस्या और सेवा और ट्रस्टीपन की, वो बाबा के जीवन में थी। और बाबा एक वैसे हठयोग के अंदर दो तरह की समाधियां बताई गई हैं, एक निर्संकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। लेकिन शुभ संकल्प समाधि का कहीं वर्णन नहीं है। और शुभ संकल्प समाधि जो है वो संगम युग की विशेष समाधि है और बाबा के जीवन में हमने देखा कि बाबा समाधि में हर समय एक सेकंड बाबा, जैसे बाबा ने कई बार बोला भी है कि ब्रह्मा ने अपने तन मन धन मनसा वाचा कर्मा सबको सफल किया, तो वो सफलता जो है बाबा के जीवन में हमने देखी। और बाबा ने हमारे को जो बताया कि एक्सरसाइज करने के लिए बताया हुआ है, अशरीरीपन का अभ्यास करने के बताया हुआ है, तो बाबा कैसे चलते फिरते सब संगठन में भी एक सेकंड के लिए अशरीरी हो जाता था, और उसका जो वाइब्रेशन जो था वो अन्य आत्माओं जो साथ में होती थी उनको ही प्रभावित करता था, तो जिस वाइब्रेशन से हम खुद अपने को भी अशरीरी अनुभव करते थे। तो ये बाबा के जीवन में हमने देखा।
जी भाई सर, आपने जैसे संकल्प समाधि की बात कही, बाबा संकल्प समाधि,
शुभ संकल्प समाधि,
शुभ संकल्प समाधि,
संकल्प समाधि में तो परमधाम की मुक्ति का अनुभूति होती है, और वो हठयोगी करते हैं, और निर्विकल्प समाधि भी करते हैं, वो जीवन मुक्ति की है, लेकिन संगम की जो समाधि है वो शुभ संकल्प समाधि है कि हर आत्मा के प्रति और हर समय हमारा संकल्प शुभ रहे। तो बाबा का एक संकल्प भी एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं था, हर समय वो विश्व कल्याण की सेवा का चिंतन, आत्माओं के कल्याण की चिंतन, उसमें ही उसकी सेवा करना, मनसा वाचा करना सब उसमें ही जाता था। जैसे आज की मुरली में जो बोला बाबा ने कि मतलब हमारा जो है दिल का प्यार बाबा से है, तो हम सब दिल की बात अनुभव करेंगे, तो बाबा के सामने जाने से जो सामने वाली आत्मा होती थी उसके दिल में क्या है, दिल में कैसा क्या है, उसके प्रति क्या भावना, वो बाबा को एकदम स्पष्ट होता था। वो उसी का कारण यही था कि बाबा का कोई भी एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं था। तो उसी के लिए बाबा ने आज हमारे को जो आज की मुरली जो अभ्यक्त सुनी उसमें बोला कि व्यर्थ को भी समाप्त करना है। तो बाबा का जीवन हमने देखा कि उसकी बाबा के शुभ संकल्प समाधि का प्रतिमूर्त हमने बाबा को देखा।
जी भाई सर, जैसे आपने बाबा को देखा होगा, उनको सम्मुख मुरली सुनी होगी, उनकी दिनचर्या कैसा होता था, मतलब जैसे अभ्यर्थ की बात, यू नो जनरली क्या होता है, वैसे अगर हम कारोबार में आते हैं, यू नो व्यवहारिक आते हैं, तो कभी कभी साधारण भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे आपने बाबा को देखा, साकार बाबा को, तो उनकी दिनचर्या और उनका सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या होता था?
तो सूक्ष्म प्रसाद तो मतलब कहने का मतलब है कि बाबा एक तो विश्व कल्याण के लिए बाबा का संदेश सारे आत्माओं को मिले, और चूंकि उनके तन्मय से बाबा आता था तो वो संपूर्णता के तो प्रतिमूर्ति थे ही थे, क्योंकि जो हिंदू धर्म में साकार और निराकार दोनों का महत्व है, तो जो साकार के तन्मय, साकार भी निराकार के समान ही था, निराकार का भी जो है जैसे दिग्दर्शन जो है हमको साकार के द्वारा ही होता था, तो निराकार और साकार दोनों का उस बाबा के तन जीवन में हमने देखा कि हर समय विश्व कल्याण का ही रहा।
भाई सर, जैसे गुलजार दादी थे, यू नो बाबा आता था तो परिवर्तन होता है ना दृष्टि में, चेहरे पे, तो साकार बाबा में जब सिवावा आते थे तो कुछ ऐसा
क्या है कि उस समय जितना इस समय हम लोग सोचते हैं उतना उस समय हम सोचते नहीं थे, बस बाबा है, भगवान है, बाप है, और हमारा तो इतना ही रहता था कि हम जब भी आए एक कभी भी हमारे को कोई संकल्प नहीं उठा, और कभी बाबा से कोई बात हमको पूछने का संकल्प नहीं आया, हमने जो हमारे को बात संतुष्टि रही हर समय, इसलिए हमारे को ज्यादा कुछ पूछने पाछने की बाबा से बात नहीं हुई, लेकिन बाबा के सामने जाने से ही अपने आप ही हमारे को सब प्राप्तियां होती थी, अनुभूति होती थी। और एक सब बात अभी हम बताएं आपको कि हमारे से पूछा जाए तो हमारे को जो साकार बाबा के टाइम पर जितना सुख शांति आनंद की अनुभूति थी, अव्यक्त के समय जितनी अनुभूति थी, आज भी हमको उतनी अनुभूति है। उस साकार बाबा के टाइम पर जो थे, साकार बाबा के उस बाबा की शक्ति से हम जैसे अशरीरी होते थे, इसलिए हमको उस अशरीरीपन की अनुभूति होती थी। अव्यक्त बाबा के टाइम पर भी देखते थे, देखो कि हाल के अंदर 20,000 लोग बैठे, पहले कितनी बातचीत होती रहती, कुछ आवाज भी होती रहती, और जैसे ही बाबा आता है पूरा हाल शांत हो जाता है, तो वो बाबा की शक्ति से वो अनुभूति हमको होती थी, और अभी हमको अपनी शक्ति से अनुभूति करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने जो बातें हमको बताई हुई हैं अब उसको वर्णन नहीं करेंगे, कुछ बात एक्सरसाइज करने को बताया हुआ है, कुछ अवस्थाओं को स्मृति के लिए बताया, जैसे पांच स्वरूप को गौरवमय स्वरूप की स्मृति के लिए बताया हुआ है, विश्व कल्याण के लिए वाइब्रेशन फैलाने के लिए, मनसा सेवा के लिए बोला हुआ है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के समान बारह बार, यहाँ तक बाबा ने बोला है कि बारह बार हर रोज शिव बाबा के समान और बारह बार ब्रह्मा बाबा के समान अभ्यास करो। तो ये जो सब अभ्यास हम जब करेंगे तो आज भी हमको वही अनुभूति होगी और हमको वही अनुभूति होती है। ओम शांति। अभी देखो हमारे सामने सारा ज्ञान क्लियर हो गया है, उस ज्ञान के आधार पे हम उस स्थिति को स्थिति में स्थित हो सकते हैं। एक अशरीरपन के लिए बाबा ने बोला हुआ है, एक थोड़े टाइम पहले मुरली चली थी कि देह और देह की दुनिया सारी भूल जाए तो वो अशरीरी स्थिति, तो उस स्थिति में जब हम स्थित होंगे तो हमको कितनी शांति और शक्ति की अनुभूति होगी वो तो हर एक करने से ही अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने बोला है कि तुम तीन लोगों के टॉप पॉइंट परम धाम में स्थित हो जाओ, परम धाम को इसमें परम धाम की फिल्म देखो, जिस मुरली ने बोला है कि तुम परम तीन लोगों की फिल्म देखो, तीनों जो है शेष चक्र की फिल्म देखो, तो परम धाम में हम अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। यदि हम जब हम परम धाम में होंगे तब हमको कोई अनुभूति नहीं होगी, लेकिन अभी जब हम देह में हैं और देह से डिटेच होकर के हम अपनी मन बुद्धि को परम धाम में स्थित करते हैं तो परम धाम का दृश्य जो है कितना व्यंगम होगा। जहां तक नजर जाएगी, एक गीत में है कि जहां दूर नजर दौड़ाएं आजाद गगन लहराए, लेकिन वो शांति का सत्युग का है, लेकिन इसमें क्या है कि यदि हम जहां तक नजर हमारी जाएगी प्रकाश और शांति शांति नजर आएगी, और उस शांति प्रकाश के बीच में जब हम अपने को स्थित कर देंगे, क्योंकि जब परम धाम होंगे तब तो नहीं होंगे, लेकिन अभी हम उसमें स्थित हो जाएंगे तो हमको कितना आनंद और कितनी शांति और शक्ति की अनुभूति होगी वो तो खुद अपने जब करेंगे तब अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसका हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन अनुभव जो है हर एक को अपने आप करना पड़ेगा।
जी भाई साहब, जैसे आप साकार बाबा के सामने जाते थे भाई साहब, तो लोग बोलते ना दृष्टि, बाबा जैसे दृष्टि देते थे तो लोग साक्षात्कार होता था, या मतलब ऊपर उड़ जाते थे, अशरीरीपन का अभ्यास उनको, जैसे अशरीरीपन का यू नो फीलिंग होती थी। तो कभी बाबा के साथ आपको ऐसे कुछ अनुभूति हुई?
उसमें क्या कोई हम जैसे कि कोई ध्यान नहीं चले जाते हैं, लेकिन हमारा देह और देह की दुनिया को भूल जाते हैं और बाबा के उस वाइब्रेशन में रहते हैं तो हमको अशरीरीपन की अनुभूति होती है। और बाबा का तो वाइब्रेशन इतना था, अभी तो कुछ अच्छा आदमी होता है जैसे तो कुछ साधु संन्यासी हो या कहीं दादियाँ ही मतलब होती थी तो उनके प्रेजेंस में हमारी स्थिति कैसी होती है, लेकिन जब साकार साकार और जिसके तन में निराकार हो तो उस समय का वाइब्रेशन कैसा होगा, तो उस वाइब्रेशन में हमको ये सोचना नहीं पड़ता था, हम ऑटोमेटिकली अशरीर रहते थे, हमारे जो संकल्प नहीं चलता था।
आपको कोई विशेष अनुभूति हुई थी वैसे?
नहीं, हमको विशेष ऐसे कोई ध्यान में अधिध्यान की तो हमारे कभी कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन हमको अतिंद्रिय सुख की अनुभूति तब भी थी जब अव्यक्त भावना में हुई, तब भी है और आज भी है, लेकिन आज जो है हमको करने के लिए जो बाबा ने हमको बताया है वो हमको करना पड़ता है, बिंदु रूप में स्थित होने का, परम धाम में स्थित होने का, अपने पांच गौरवमय स्वरूपों को बाबा ने स्मृति दिलाई, तो स्मृति का एक सिद्धांत है, स्मृति से स्थिति और स्थिति से अनुभूति, तो जब हम उसको स्मृति में लाते हैं तो हमारी स्थिति वैसी बनती है और स्थिति से फिर हमको उसकी अनुभूति होती है उस स्वरूप की। तो हम पांच अपने जो बाबा कहते हैं पांच गौरवमय स्वरूपों को याद करो, तो उसमें जब हम स्थित होंगे तो धीरे, इसीलिए बाबा ने बोला बार बार ये एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि पहले जो है पहले जो था भावना के आधार पर चलता था और हमको अनुभूति होती थी, लेकिन अभी हमको विवेक के आधार पर अनुभूति करनी पड़ेगी। तो हम जब जितना अपने जो बाबा ने हमको एक्सरसाइज बताई है, स्मृतियां बताई हैं, अभ्यास करने को बताया, विश्व कल्याण की सेवा के लिए बताया हुआ है, लाइट हाउस माइट हाउस में स्थित होकर के विश्व कल्याण की सेवा करो, यहाँ तक कि बाबा ने पहले मुरली में बोला था कि आप तुम जो है टाइम निकालो स्पेशल विश्व कल्याण की सेवा के लिए, उसके बाद कुछ टाइम पहले बाद रिवाइज किया चार पाँच साल बाद कि किसने किसने किया और कितना करते हैं, और कहा कि नहीं भी करते हैं तो अभी करने का है, तो हम उतना जब हम विश्व कल्याण का संकल्प लाइट हाउस माइट हाउस में स्थित होकर फैलाएंगे तो हमारी स्थिति वो वैसी बनेगी, अनुभूति हमको होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्थिति से अनुभूति होती है, नेचुरल लॉ है वो।
तो पहले साकार बाबा की उपस्थिति का फायदा तो होता था उनकी दृष्टि का,
उसकी उसके उसकी उसकी शक्ति से होता था। अभी हमको अपनी शक्ति से और ज्ञान के ज्ञान योग की शक्ति से करना पड़ेगा
जी। भाई साहब आपको गंगे दादी ने ज्ञान दिया?
नहीं, ज्ञान तो हमने एक्चुअली फरुखाबाद में लिया था, और गुप्ता जी जो बनारस वाले थे, हमारा क्या है कि हमारा पहले से ही विवेकात्मक जो संकल्प था, इसीलिए हम विभिन्न सत्संगों में जाते रहे, लेकिन कभी हमारे को किसी को गुरु करने का संकल्प नहीं हुआ, क्योंकि जो हम उसको गुरु कर लें, क्योंकि हमको पहले हमको जिस रास्ता जिस गुरु के पास हम जा रहे हैं या जिसको गुरु करना है उसका रास्ता हमको क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा किसी के सत्संग में जाने से हमको हुआ नहीं। डिवाइन लाइट है, निरंकारी है, इन सब में हम गए, लेकिन हमको सबसे साधना पद्धति जो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की अच्छी लगी, लेकिन उसमें भी ज्ञान का वो नहीं था, उसमें खाली प्रकृति के बीच में अपने को स्थित करके और चिंतन करते करते उसमें खो जाने का होता था, तो करते थे। तो जब हम ज्ञान में आए तो हमारा संकल्प था कि हम अजमेर में जो योग आश्रम है उसमें जाने का था। तो उसमें हमारा एक साथी था इंटरमीडिएट, हम उसके साथ पढ़े थे, तो उसने कुछ जो संस्था में जाता था तो उसने तीन चार किताबें हमको छोटी छोटी दी और बोला कि एक बार आप यहाँ भी चलो, उसके बाद तुम्हारा जाने का हो तो चले जाना। तो हमने गए, तो जिस दिन हम गए उसी दिन हमको जो गुप्ता जी की युगल जो थी कमला बहन जी, उन्होंने हमको झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र दिखाया। वो झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र देखने से हमारे को थोड़ा बस हो गया कि ये ज्ञान सही है और हमको इसमें ही चलना है। उस दिन से हम रेगुलर हो गए और हमारे को ना कोई कोर्स हुआ हमारा और ना कुछ भी हुआ, हम उस दिन से हमारा रेगुलर चलता है और मुरली ही हमारा आधार है। इसलिए मुरली में बाबा सब कुछ बताता है और जितना हम गहराई से मुरली का स्टडी करेंगे उतना ही हमारे को जी सारा ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। क्योंकि योग का भी नियम है कि जिसका हम क्लास सुनते हैं, जिसका वो पढ़ते हैं, तो उस व्यक्ति का चित्र सामने आता है, लेकिन जब हम मुरली पढ़ेंगे तो बाबा सामने आएगा और हमारी बुद्धि बाबा के साथ रहेगी। तो जितना हमने ये हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि हम किसी का क्लास ना सुने, क्लास पढ़े नहीं, मैगजीन पढ़े, सब कुछ पढ़े, लेकिन हमारा आधार मुरली है और मुरली से हमारा सब स्पष्ट होगा। क्लास में तो आप सभी अनुभवी हैं कि अलग अलग तरह से लोग अपने अपने हिसाब से वर्णन करते हैं, लेकिन वो वर्णन कहाँ तक यथार्थ है और कहाँ तक हमको हमारे लिए प्रैक्टिकल होगा वो देखने की बात है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं क्लास में बोलते हैं कि परम नाम से हमको किरणें आ रही हैं। अभी आप सोचने की बात है कि योग में हम बैठेंगे परम नाम से हमारे ऊपर किरणें आएंगी? परम नाम में शिव बाबा है, उससे किरणें निकलती हैं, निकलेंगी और वो हमारे तक आएंगी, क्योंकि जो वाइब्रेशन जो है वो संकल्प से क्रिएट होता है और परम नाम में शरीर ही नहीं, बाबा का भी शरीर नहीं, हमारे को भी दूसरों को भी शरीर नहीं, तो वहां से किरणें कैसे आएंगी? किरणें साकार से आ सकती हैं। तो अभी ये हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन इस पे विचार करने के लिए है कि आप परम धाम से किरणें आ सकती हैं, अरे आ सकती हैं तो ठीक है, आपको अच्छा लगता है, नहीं आ सकती तो उसके लिए आगे के लिए रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो वो क्या हठयोग जैसा हो जाता है कि हठयोग में हम जैसे करते हैं तो जैसा संकल्प करते हैं उस हिसाब से हम उसमें गहराई में जाते हैं होता है, लेकिन उससे स्पष्ट नहीं है। तो ये अभी ज्ञान के आधार पर हमको सोचना है कि ये संभव है या नहीं है, वो बात हमारे को। इसीलिए हमारा आधार जो है ज्ञानी है, बाबा की मुरली है और बाबा है।
मैं एक्चुअली गंगे दादी की बात कर रहा था, गंगे दादी से आपने पालना लिया है।
गंगे दादी के साथ हम क्या कि गंगे दादी के पास जब हम कानपुर में चले गए, हमारे फरुखाबाद में ज्ञान लिया और एक साल के बाद हम कानपुर में चले गए, तब तो गंगे दादी के पास रहते थे, लेकिन कानपुर उस समय का छोटा सेंटर था, तो छोटे सेंटर में रहने करने की तो असुविधा होती थी, लेकिन उस समय एक विशेष बात ये हो गई थी कि मम्मा ने शरीर छोड़ा था और कानपुर का वो गोल्डन पीरियड था उस समय तक, मम्मा के टाइम तक, और पांच सात बंगले थे, सब में क्लास होते सेंटर्स थे,
लेकिन जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो धीरे धीरे वो सब जिज्ञासु जो थे वो जैसे कि बंद कर दिया उन्होंने, मम्मा प्रेम प्यार से चलते थे तो वो छोटा सेंटर था और वहाँ रहने के भी थोड़ा बहुत होता था। तो गंगे दादी ने अपने को हमारे को तो गंगे दादी ने भी बड़े प्यार से पाला, लेकिन उनका जो सेंटर छोटा था और हमारे को रहने की भी दिक्कत होती थी, इसलिए कभी कभी हम वहाँ रहते थे और कभी कभी गांव चले आते थे। उसमें तो उसमें कोई ज़्यादा सेवा करने वाले भी उनके पास नहीं होते थे, तो हमको गंगे दादी तो चांस देती थी और हम सही सेवा करते थे, हमारे को भी रास्ता मिला था सेंटर पर रहने का। तो इसलिए लेकिन गंगे दादी ने सब तरह से हमारी पालना किया, सब तरह से हमको आगे बढ़ाया। और
जी भाई साहब, आप जब मधुबन में आए तो उस समय पे बड़ी दादी मधुबन देखते थे, बड़ी दादी की कुछ हमें आपकी जो पर्सनल मुलाकात हो उनसे क्या सीखा कुछ?
देखो हम जब मधुबन में हम 15-16 साल तक तो हम कभी सेवादारी में भी नहीं आए। 79 में हम फर्स्ट टाइम जब ओम शांति वन बनना था तब उसका सर्कुलर गया मुरली में, तो हमारे भाई संतराम भाई थे, उन्होंने बोला कि तुम मधुबनी में भी थोड़ा सेवा करके आओ। तो हम फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम हमारे को सेवा करने का चांस जो है पहरे पे मिला, और पहरे में वो युगंदर भाई था, वैसे अच्छा था कोई वो नहीं है लेकिन थोड़ा स्वभाव से कड़क था, तो उसके साथ कोई ज़्यादातर रहना नहीं चाहता था। लेकिन हमारे को तो 8-10 महीने हम रहे तो हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। और उसी समय हमारे को निर्भर भाई, दादी और दीदी तीनों, निर्भर भाई ने लाइन बैठने के लिए किया लेकिन दीदी और दादी दोनों ने बोला कि सब बंधन काट के आए, तो हम तो सब बंधन काट के आए थे, हमारे तो जब से भक्ति मार्ग में भी चले ज्ञान मार्ग चले हमारे लिए कोई बंधन नहीं था, हम निर्बंधन ही थे, माँ बाप का भी कोई लौकिक माँ बाप का भी कोई बंधन हमारे पास दबाव नहीं था। तो हम बंधन काट करके आए थे, गंगा गए गंगा घाट, जमुना गए जमुना घाट वाली तो आज थी, हम जहाँ पहुँच जाते थे वहीं हमारा सेट हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती ऐसे ही कानपुर में और यहाँ भी। तो हमको दादी ने दीदी ने दोनों से छुट्टी दी थी, लेकिन उस समय क्या था कि अभी जैसे डायरेक्ट सरेंडर हो जाते हैं उस तरह से सरेंडर नहीं होते थे, क्योंकि वो टेस्ट करते थे। तो हमारे को 8-10 महीने के बाद हमको लाइन तो क्लियर दे दिया, लेकिन हमको बोला कि तुम जब जाओ और फिर बुलाएंगे तुम्हारे को, तो हमको गए। तो फिर उसके बाद दिल्ली में मेला था, हम आ गए और इधर आ गए, तो तब से हम इधर 80 से सरेंडर हैं। तो हमारे को दादी ने और दीदी ने, और दीदी की बात ऐसी रही कि दीदी जब लास्ट टाइम जा रही थी तो हमारे को, हम उस समय हमारे दीदी के टाइम पर हमको संगम में भगवान में सेवा करने भेजा था, तो हम वहाँ चलते दीदी मिलके गई। दीदी ने हमको प्यार प्यार बताया कि देखो परिवार है और इसमें बड़े प्यार से रहने का है, और ऐसे करके बोल के गई और वो आज शब्द हमारे के आते हैं। अच्छा, बाबा ने 88 में जब हम बाबा से मिले तो बाबा ने हमारे को दो बातें पूछी। पहले तो बाबा ने कहा कि ज्ञान से भरपूर हो, अभी हम क्या उत्तर दें, क्या उत्तर दें
ज्ञान सागर के सामने, क्या बोलेंगे?
नहीं, हम हाँ कहें तो भी, क्योंकि यदि हम हाँ ज्ञान से भरपूर हैं तो संपूर्ण बन गए, अच्छा भरपूर नहीं है तो असंतुष्ट हैं, तो अभी हम दोनों बातें नहीं बोल सकते थे। तो एक सेकंड जैसे ही हमारे को बाबा को क्या बोलें, तो बाबा ने अपने आप ही बोला कि भरपूर हैं और भरपूर में भरपूर हो रहे हैं, और हम आज तक भरपूर में ही भरपूर हो रहे हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, और बाबा ने हमको ज्ञान के आधार से भरपूर किया भी है और हो भी रहे हैं। और जब उसी समय बाबा ने हमको दूसरी याद दिलाई जो 79 में, तो बाबा ने बोला कि तुम जिस विशेषता से समर्पित हुए हो उस विशेषता को कभी छोड़ना नहीं, और हमारे को ऐसा कोई कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं कि हम उसको छोड़ें, हम जिस डिपार्टमेंट में गए उस डिपार्टमेंट में हम सेट हो गए। एक ही बार हमारे सामने बात आई कि हमको दादी ने बॉम्बे भेजा था अकाउंट के लिए, लेकिन बॉम्बे की हुई इन कराई में हमारे को मन नहीं लग रहा था, तो हमने दादी को लेटर लिख दिया और रजिस्टर्ड लेटर लिखा कि हमारे को बॉम्बे में नहीं रहना है, यदि हम समर्पित रहे 15 साल समर्पित हैं, यदि चाहे तो दोबारा भी डिसाइड कर सकता है कि यज्ञ में रहना है नहीं रहना है, लेकिन हमको बॉम्बे में नहीं रहना है। तो दादी जैसे ही हम आए तो दादी ने हमको जहाँ हम रहते थे वैसे ड्यूटी दे दिया और हम रहने लगे। और दादी का हमने क्या देखा कि दादी कभी किसी क्लास भी कराती थी या कभी कोई किसी मीटिंग होती थी किसी चर्चा होती थी तो जहां देखती कि वातावरण विपरीत जा रहा है तो दीदी दादी अपने को विड्रा कर लेती थी और फिर बाद में उस बात को निकालती थी। तो उसका सरल स्वभाव ऐसा था कि वो ज्यादा रिजिड नहीं होती थी कि तो दादी का हमने देखा कि बहुत ही सरल स्वभाव था और ऑलराउंड प्रतिभा थी। कंस्ट्रक्शन की भी बातें वो करेक्ट करेगी तो सब तरह की बातें
माना जैसे बोलते हैं दादी में परख शक्ति बहुत थी
परख शक्ति थी ऑलराउंड प्रतिभा थी तभी मतलब आगे बाबा के बाद फर्स्ट चांस उसको मिला दादी को।
उनको माँ भी बोलते हैं और
माँ भी माँ की तरह से ही पालना करती थी। इसी में एक अपनी बात बताएं कि एक बार हमको थोड़ा सा कुछ तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल में हम भर्ती हुए तो हॉस्पिटल उस समय तो इतना ज्यादा वो नहीं था तो हॉस्पिटल में हमको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आई तो हमारे को थोड़ा ये हुआ कि ये ठीक नहीं है आज हमने तो सहन कर लिया है किसी दूसरे साथ ये व्यवहार होगा तो अच्छा नहीं होगा। व्यवहार क्या था कि हमारे को मलेरिया हो गया था और वो ठीक नहीं हो रहा था तो मलेरिया की दवाई 400 रुपये की दवाई दो टेबलेट आती थी वो अहमदाबाद से मंगाई वो 3 दिन तक दवाई रखी रही और हमारे को दवाई दी नहीं गई। तो फिर बाद में डॉक्टर मित्तल थे वो देखने आए तो हमसे पूछा कि दवाई दी तो हमने बोला दवाई नहीं दी हमारे को तो अभी नहीं मिली। तो वो गैलरी में जब गए तो उन्होंने बोला कि लाओ हम दस्तखत कर देते हैं और दवाई ला के दे दो। तो हमारे को ये संकल्प आया कि ऐसा ही किसी नए के साथ हो व्यवहार होगा तो उसका तो जैसे कि बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगी तो इसलिए हमने थोड़ा रेगलिंग बार्गेनिंग वो किया कि हमने डिपार्टमेंट में हमको नहीं जाना है ऐसे हमने बोला दादी को। तो दादी ने पहले तो उसे फिर एक दिन दादी क्लास से उतर रही थी और दादी ने हमको बुला कि महेश भाई तुम जहाँ भी जाना चाहो जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहो हम तुमको पूरा सहयोग देंगे तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तो दादी ने हमारे को ऐसे बोला तो उसमें फिर हमको रात को नींद नहीं आई और हमने सवेरे ही जब हम आए तो दादी सामने क्लास कराने के बाद नीचे उतरी तो हमारे को आया कि जब दादी ने हमारे को इतना सहयोग दिया और हमारे साथ इतना विश्वास रखा तो हमारा कर्तव्य है कि दादी जहाँ बोले वहाँ जाएं। तो हमने दादी को बोला कि दादी अभी आप हमको जहाँ भेजेंगे हम वहाँ जाएंगे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो दादी ने बोला कि दादी देखो अकाउंट में है तो जरूरत है अभी तुम अकाउंट में जाओ फिर तुमको दूसरा ड्यूटी दे देंगे। तो दादी हम अकाउंट चले गए क्योंकि हमारा किसी से वैसे व्यवहार नहीं था लेकिन हमने सोचा कि यही व्यवहार किसी नए के साथ होगा तो उसको थोड़ी फीलिंग आएगी लेकिन हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई और हमारे को तो हम देखते हैं कि अपना सब तरह से बाबा मदद करता है।
वैसे आप अकाउंट में विश्व रतन दादा के साथ भी रहे
विश्व रतन दादा के साथ में देखा जाए दादा कितना जो है निरंकारी और जैसे कि बाबा के प्रति बाबा जो दादा का क्लास में था उनका एक ही बात थी कि बाबा हमारे साथ बैठा हुआ है और हमको देख रहा है हमको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कि गलत हो क्योंकि बाबा देख रहा है बाबा के प्रेजेंस में हम गलत काम कर ही नहीं सकते हैं ऐसे। और बाबा एक एक बात देखता था कई बार बाबा ने जो क्योंकि बाबा को एक बार बाबा ने बोला दादा को कि तुम राजा बनने वाले हो तो तुम्हारी प्रजा कहाँ है क्योंकि दादा क्लास वगैरह नहीं कराता था सेवा कुछ नहीं करता था। तो तब से दादा को ये हो गया कि हमको क्लास कराना है और फिर दादा ने हमको लिख लिख करके हम उसे टाइप करते थे दादा को सब टाइप करके दिया दादा को फिर दादा किताब भी बनाई तो फिर दादा ने अपना क्लास फॉर्म किया और फिर दादा क्लास कराने लगे। तो दादा और दादा एक बात और बोलता था कि देखो बाबा सामने बैठता है क्लास में जो करा था बोलता कि बाबा कभी भी जोर से हंसता है तो जब बाबा नहीं हंसता है कैसी भी बात आए कुछ भी बात आए तो हमको जोर से नहीं हंसना है। तो बाबा जो है बाबा की एक एक बात को ऐसे लेता था जैसे कि अच्छा कभी भी बाबा दादा को हमने किसी छोटी बहन हो कभी उसका नाम लेते हुए नहीं देखा जब ही गए बहन जी, बहन करके ही बाबा ने संबोधित किया उसको। तो दादा जो है ईश्वर निर्माण था
जी, जैसे वैसे हमने देखा दादा को, अमृत वेला का योग उनका एक्यूरेट, मेडिटेशन हॉल में बैठ के मट्टियों में भी दादा सबसे पहले आके अमृत वेला में योग का, उनका सूक्ष्म पुरुषार्थ वो जैसे आप रहे, उनका सूक्ष्म पुरुषार्थ
दादा के। तो देखो हमसे आज हमसे इतने सब लोग बैठे हुए हैं, हमको किसी को भी बोला जाए तो हम उस स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दादा जो था इस दादी के ऑफिस में बिस्तर लगा के सोता था और सवेरे बिस्तर उठाता था और चार बजे योग में जाता था। और ये एक साल नहीं, दसों साल दादा का ये सिस्टम रहा। जबकि हम एक कमरे में दो तीन लोग रहते हैं तो हमको रहने में दिक्कत होती है, लेकिन दादा रोज जो है ये किया। तो दादा का धैर्य है, सहन शक्ति है, बहुत अच्छी थी
जी। वैसे सब स्पार्क वाले लोग आए हैं, ये स्पार्क विंग जैसे आप जानते हैं कि प्रयोग करते हैं, योग के प्रयोग संकल्पों पे है, बीमारी पे है, यू नो, संकल्प शक्ति से हम कैसे दूसरों को यू नो वाइब्रेशन भेजें। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि हम ऐसा कौन सा सूक्ष्म पुरुषार्थ करें जो यू नो,
देखो जहां तक है सूक्ष्म पुरुषार्थ के हैं, हम तो यही बोलेंगे और हमारे को भी वही अपील करता है कि बाबा ने जो भी हमको एक्सरसाइज बताई हुई है, जो भी स्मृतियां बताई हुई हैं और जो भी करने के लिए बताया हुआ है, वो हम सब करें तो हमारी स्थिति बनेगी और हम वो कर सकेंगे। क्योंकि उसी में बाबा ने ये भी बताया कि उसके लिए विश्व कल्याण के लिए जैसे वाइब्रेशन फैलाओ सर्व आत्मा में, और वाइब्रेशन में भी देखा जाए तो एक व्यक्ति मर रहा है और एक व्यक्ति उसको मार रहा है। अब दोनों के प्रति जो है हमारा दृष्टिकोण एक समान कैसे हो सकता है? हो सकता है जो मर रहा है उसके प्रति हमारी रहम की भावना हो सकती है, लेकिन जो मार रहा है उसके प्रति भी हमारी रहम की भावना हो। उसी में बाबा ने एक भी बोला है कि एक आत्मा के प्रति भी तुम्हारी सुभावना सुभावना नहीं है, तुम्हारा भाव नहीं है, है तो तुम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे नहीं कहला सकते हो। तो अब हम जो मार रहा है उसके प्रति भी हमारी भावना कैसे रहेगी, उसके लिए हमको रास्ता ढूंढना है। और उसके लिए रास्ता यही है, हम समझते हैं, वैसे आप हर एक अपने अपने हिसाब से सोचेगा कि जितना हम इस ड्रामा को अच्छी चीज से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, उसके गुणधर्मों को समझेंगे, तभी हमारी दोनों के प्रति सुभावना रहेगी। क्योंकि कोई भी घटना जो है बिना किसी काज एंड इफेक्ट नहीं होती है। तो जो भी है, क्योंकि अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं, बहुत कुछ होते हैं, तो इन सब बातों को लेकर के देखा जाए तो ड्रामा ही एक ऐसा है जो कि हमको उस स्थिति को मेंटेन करने देगा। क्योंकि ये हमारे को ड्रामा का बराबर ज्ञान नहीं है और ड्रामा कैसे अंडरस्टैंडिंग धारणा में नहीं है, तो हम ना असरी नहीं हो सकते हैं, परम नाम में हमारी बुद्धि नहीं हो सकती है, हम जो है तीन स्वरूपों की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, हम बाप समान भी स्थिति में नहीं हो सकते हैं। क्योंकि शिव बाबा जो है वो निराकार है, निर्संकल्प है, क्योंकि शिव बाबा को कभी कोई संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि और बिंदु रूप में रहता है और वो सारे खेल को साक्षी होकर देखता है। ब्रह्मा बाबा को संकल्प हो सकता है लेकिन शिव बाबा को कोई, तो जब हम शिव बाबा के समान अपनी स्थिति करेंगे तो वो गुणधर्म हमारे को अपनाना पड़ेगा, और वो गुणधर्म हम तभी अपना सकेंगे जब हमको ड्रामा का सही अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए ड्रामा के गुणधर्मों को जितना हम चिंतन करेंगे और जितना उनको समझेंगे और प्रैक्टिकल में जीवन में लाएंगे, उतना हमारी हमको ये सब करने में सुविधा होगी। क्योंकि निर्संकल्प और निर्विकल्प और शुभ संकल्प, ये तीन स्थितियां ऐसी हैं जो हमको अनुभूति कराती हैं और दूसरे को अनुभव कराने में मददगार है। तो तीनों के लिए हमको ड्रामा का ही मददगार है। अपने स्वरूप को तो हम जानते ही हैं कि हम परम नाम में हमको संकल्प नहीं उठा है, लेकिन अभी शरीर में है तो संकल्प उठता है, लेकिन जब ड्रामा का सही हमारी धारणा में आ जाएगा तो संकल्प से हम परे हो सकते हैं और शुभ संकल्प का रख करके सर्व आत्माओं के प्रति सुभावना का वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तब तक जब तक हमारी योग अवस्था अपनी अवस्था नहीं है तब तक हम नहीं कर पाए। इसलिए करेंगे थोड़े टाइम होगा लेकिन जितना जितना हम करते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। और ड्रामा के लिए बाबा ने जो हमको मुरली में जो जो बातें बताई हुई हैं उन सब बातों को बाबा ने बोला है कि अभी एक हूबहू रिपीटेशन का ही बात देखेंगे तो इसमें अनेक कई लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हो जाएंगे। तो हूबहू रिपीटेशन का भी राज बताया है। साथ साथ बाबा ने बताया कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा, ये ड्रामा का गुणधर्म है। तो वो भी हमारे को रियलाइज करना पड़ेगा और जब हम रियलाइज करेंगे तो हम प्रैक्टिकल में समय पर उसको यूज कर सकेंगे। तो ऐसे ही बहुत से जो भी ड्रामा के गुणधर्म हैं उन सबको हमको स्टडी करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, धारणा में लाना पड़ेगा, तो हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। और इस पार्क में जो हम कर रहे हैं कि दूसरों को अनुभव, क्योंकि बाबा ने बोला ना पहले खुद अनुभव करेंगे तब दूसरों को अनुभव करा सकेंगे, तो उसको हम खुद भी अनुभव करेंगे दूसरों को भी करा सकेंगे।
वैसे मैं आपने जो बुक लिखी है उसमें से कुछ क्वेश्चन थे मैं पढ़ रहा था, तो जैसे एक क्वेश्चन था एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म, ये तीनों क्या हैं और आगे था इसमें से ग्रेसफुल जीवन किसका है, ग्रेसफुल।
हाँ, तो अभी आप
ये तीनों चीजें पहले हैं क्या?
पहले आप बताओ कि ग्रेसफुल जीवन किसका है। वो हम जो किताब बनाई हुई है वो हमने दो पार्ट में बनाई हुई है। एक पार्ट में आपका कंसेप्ट क्या है जो छोटी वाली है, और बड़े में फिर हमने हमारा कंसेप्ट क्या है वो हमने उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो वो तो उसमें आप टिप करो ग्रेसफुल जीवन तीनों में किसका है
जी। मेरे
अभी आप देखते हैं जनरली लोग कहते हैं कि संगम युग जो है जल्दी खत्म हो जाए और सत्युग जल्दी आ जाए, लेकिन हम समझते हैं संगम युग जैसा सुख शांति आनंद तीनों लोकों में और तीनों कालों में कहीं नहीं है। इसलिए जो है संगम युग का जितना हमने जितना सुख हम लेंगे उतना ही हमारे जीवन अच्छा हमको अनुभव होगा और हमारी अवस्था अच्छी रहेगी। यदि हम सत्युग में सत्युग का जीवन देखें वो तो परछाई है संगम युग के जीवन की। बाबा ने कई बार बोला भी है कि महिमा जो है ब्राह्मणों की और शिव बाबा की है, जो उतरती कला वालों की क्या महिमा है, और सत्युग जो है उतरती कला का युग है तो उनकी कोई महिमा नहीं। लेकिन चूंकि खेल चलना है और हमको सत्युग में ले जाना है बाबा को, तो हमको बोलता है कि पुरुषार्थ करो उसके योग बनो, लेकिन जो संगम युग का जो सुख है ऐसा सुख तीनों लोकों और तीनों कालों में कहीं नहीं है। उसके सुख को हम जितना अनुभव करें वही अच्छा है। और सबसे जो आपने प्रश्न किया पूछा तो सबसे अच्छा ग्रेसफुल जीवन जो है एडवांस स्टेज वालों का ही है। एडवांस जन्म तो जो सत्युग में जन्म लेंगे उनका होगा, और एडवांस पार्टी जो है वो छोड़ के चली गई तो एडवांस पार्टी वालों को ज्ञान नहीं है। उनको उनको अब उनको भी बाबा का जो ब्रह्मा बाबा है वो एडवांस पार्टी को इमर्ज करके इंस्पायर कर देगा। हमको जो है खुद पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा से मिलने का और उसकी अवस्था अपने बनानी पड़ेगी। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जब अव्यक्त हुए थे तो बाबा ने एक पहली मुलाकात में ही बोला था कि जो अव्यक्त रूप से मिलन मनाने के अभ्यासी होंगे वही अंत तक अभ्यास जो मिलन जो है मना सकेंगे। इसीलिए अभी जो एक वातावरण में है कि कोई कहता है कि बाबा ने जन्म ले लिया, कोई कहता है बाबा चला गया, कोई कुछ है, तो इन सब बातों को समझने के लिए हमको विचार चलने का, बाबा चला गया तो कैसे चला गया, जन्म ले लिया तो कैसे जन्म ले लिया, उस सब गुणधर्मों को हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा जो ग्रेसफुल जीवन है वो एडवांस स्टेज वालों का ही है, ब्राह्मणों का ही है।
बाबा ने भी बोला है कि इसी जन्म में हम परमात्मा अनुभूति करते हैं।
हम जो भी करते हैं इसी जन्म में करते हैं, सेवा भी हम इसी जन्म में करते हैं। भगवान से मिलने के लिए राजा भर्तहरि जैसे ने राजाई छोड़ दी, तो भगवान से हम मिलते भी हैं, भगवान से बात भी करते हैं, और ज्ञान के लिए भी हमको सारा तीनों लोगों तीनों कालों का सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला हुआ है। तो जितनी प्राप्तियां अभी हैं इतनी प्राप्तियां सत्युग में भी नहीं होंगी। खैर सत्युग में तो खाली खाने पीने और रहने करने का ही सुख होगा, और क्या सुख होगा। वो भी डाउनफॉल टेंडेंसी होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक नियम है ना कि उपयोगिता ह्रास नियम, तो जितना हम उसको उपभोग करते हैं वैसे हमारी उस चीज की उपयोगिता कम होती जाती है। तो वहां जैसा जितना जितना हम जन्म लेंगे जितना जितना उपभोग करेंगे धीरे धीरे हमारी अवस्था डाउन होती जाएगी, भले हमको उसका अनुभव नहीं होगा जब लंबे समय थोड़े बाद अनुभव होता है, नहीं तो दो कला कम कैसे होती है। तो वो उतरती कला वालों को कोई नहीं, वो तो इस संगमयुक्त जीवन की परछाई है, इसमें हम जितना अनुभव करें कर सकते हैं।
मैं सिर्फ एक क्वेश्चन और था, जैसे बाबा कहते हैं आदि में बच्चों को बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराए और अंत में भी बहुत साक्षात्कार कराएंगे, परंतु जो बचेंगे वही करेंगे।
लेकिन ये पहली बात तो यह है कि अंत के साक्षात्कार और आज के साक्षात्कारों में बहुत अंतर है। अभी कुछ दो तीन कुछ टाइम पहले मुरली बाबा ने बोला, आज की मुरली बोला कि उस समय बाबा ने आज में जो बाबा ने बहलाने के लिए साक्षात्कार कराए, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था और सब छोड़ करके आए, तो उसमें वो कहीं राजाई के अभी कराता था, कभी सब साक्षात्कार कराए। और अंत में जो साक्षात्कार होगा हमारी अवस्था का साक्षात्कार होगा, सत्यु का साक्षात्कार होगा, तो वो साक्षात्कार बाबा कराएगा। लेकिन किसको कराएगा अब देखा जाए तो जिनके सामने बाबा ने ये सब बातें बोली हैं वो तो एक समय है भी नहीं, वो तो सब एडवांस पार्टी में चले गए, और कुछ थोड़े बहुत हैं वो जाने वाले हैं, हम सबको एडवांस पार्टी में ही जाना पड़ेगा। जो भी 40 साल से 45 आसपास वाले हैं, हम समझते हैं कि 99% सबको एडवांस पार्टी में जाना पड़ेगा।
पूछा मलुआ मौत मलु का शिकार क्या है, बाबा साकार मुरली में बोलते हैं ना मलुआ मौत मलु का शिकार।
हाँ, तो मलु का शिकार मतलब जैसे तो हमारा अवस्था अच्छी रहेगी तो उस समय कोई मरे कोई जिए हमारे को खुशी रहेगी, हमारे को कोई उसका चिंतन नहीं चलेगा, क्योंकि वो उस लेकिन उस अवस्था को मेंटेन करने के लिए हमको पहले से अभ्यास करना पड़ेगा, स्थिति बनाना पड़ेगा।
फिर एक क्वेश्चन में पढ़ रहा था, जैसे वैसे भरूच में जो हुआ था भूकंप आया था, आपका क्वेश्चन है कि जैसे साउथ अफ्रीका में जो बी के भाई बहन, भरूच के भाई बहन, नागपुर की माता, जैसे कार एक्सीडेंट में
दो एक्सीडेंट हुआ था, नागपुर की कई माताएं मर गई, भरूच वाले आ रहे थे बाबा के मिलने,
इसको अकाले मृत्यु बोलेंगे।
हाँ, तो हमारे से पूछा जाए तो अकाले मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, हर चीज जो है अपने जमा अनुसार अपने समय पर हो रही है, इसलिए हम अकाले मृत्यु किसी को भी नहीं कह सकते। अकाले मृत्यु कहें के किसे क्यों कहते हैं उसके लिए एक उदाहरण हम देते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे थे 10 साल 12 साल के, और उसको किसी मुसलमान राजा ने जिससे लड़ाई हुई तो गुरु पकड़ लिया और उनको दीवार में चिना दिया था, वो तो सबको मालूम होगा इतिहास। तो जब वो चिना रहा था तो दीवार जब छोटे बच्चे के गले तक पहुंच गई तो बड़े बच्चे को आंसू आ गए, और तो छोटे बच्चे ने उसको बोला कि तुम रोता क्यों है, तो बड़े बच्चे ने बोला कि हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हम मर रहे हैं, हम रो इसलिए रहे हैं कि तुम हमारे बाद में आए हो पहले जा रहे हो। तो वो अकाले मृत्यु है कि बाप के सामने बच्चा चला जाता है, बड़े भाई के सामने छोटा भाई चला जाता है, इसलिए उसे अकाले मृत्यु कहते हैं, वैसे अकाले मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है।
जी, सब ड्रामा में फिक्स,
सब ड्रामा के अनुसार होता है, और क्योंकि ड्रामा जो है एक तो ड्रामा नूंद है और कर्म और फल का सिद्धांत है, और सब होगा और हो भी रहा है, इसलिए ड्रामा में हमको पक्का निश्चय होना करना पड़ेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसके गुण धर्मों को समझना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो संपूर्ण स्वरूप की जहां तक बाबा ने हमको बोला है कि संपूर्ण स्वरूप में दो 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 बातें देखनी पड़ेंगी, एक तो संपूर्ण स्वरूप हम परम नाम में है, और दूसरा जब हम फर्स्ट जन्म लेते हैं तो हमारा संपूर्ण स्वरूप होता है, तो उसके लिए बाबा कहता है कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण सिंबल है, और दूसरा पर जो है हम परम नाम में अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो वो संपूर्ण स्वरूप है, तो दोनों स्वरूपों को हम अपने सामने रखेंगे और उसको देख कर प्रसाद करेंगे। लेकिन परम नाम के संपूर्ण स्वरूप देखेंगे तो अशरीरी बनेंगे, और ये स्वरूप देखेंगे तो हमको दैवी गुण धारण पर दैवी गुणों की धारणा होगी, तो दैवी गुण धारणा करते करते हम बनेंगे। तो संपूर्ण स्वरूप तो बाबा जो लक्ष्मी नारायण चित्र है वही हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, और वैसा ही हम वही संपूर्ण स्वरूप है हमारा
जी।
वैसे तो हर एक आत्मा का संपूर्ण स्वरूप होता ही है, जो फर्स्ट जन्म लेगा कोई भी आत्मा है, आज भी जो आत्मा जन्म ले रही है वो अपने संपूर्ण स्वरूप में ले रही है, लेकिन एक संपूर्ण स्वरूप उस आत्मा का है और एक संपूर्ण स्वरूप जो है सृष्टि चक्र के हिसाब से है, तो सृष्टि चक्र के हिसाब से तो संपूर्ण स्वरूप फर्स्ट लक्ष्मी नारायण के बोलेंगे, और उसमें भी बाबा ने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि संपूर्ण स्थिति जो है वो श्री कृष्ण की कहेंगे, नारायण की भी थोड़ा कम हो गई, क्योंकि जिस समय हमने संपूर्ण जन्म लिया उसी समय से स्थिति कम होती जाती है। तो संपूर्ण स्वरूप जो है वो जो फर्स्ट जन्म लेते हैं वही है हर आत्मा का, हमारा अपना होगा दूसरे का दूसरे हरेक का होगा। लेकिन अभी तो जैसे कि संगठित रूप से संपूर्ण स्वरूप हमारा लक्ष्मी नारायण है
जी। भाई साहब एक क्वेश्चन और था, जैसे फरिश्ता रूप और सूक्ष्म देह इनमें कुछ अंतर होता है?
तो फरिश्ता रूप जो है वो संपूर्णता के बाद आता है, जैसे फरिश्ता रूप जैसे ब्रह्मा बाप का ही है। अब ब्रह्मा बाप जो है संपूर्ण साकार वतन से अपना कार्य पूरा करके सूक्ष्म वतन में है, तो वो फरिश्ता स्वरूप है। और सूक्ष्म शरीर तो एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो सूक्ष्म शरीर होता ही है, लेकिन कुछ सूक्ष्म शरीर में आत्माएं कुछ टाइम तक भटकती हैं रहती हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन वो जो फरिश्ता स्वरूप होता है तो सूक्ष्म वतन के भी एक जो है जैसे कि अपर लेवल है एक लोअर लेवल है, तो जो दूसरे सूक्ष्म स्वरूप वाले हैं वो लोअर लेवल से ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो फरिश्ता जो है वो अपर लेवल में जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा जो है वो अपर लेवल में है, तो वो फरिश्ता जो है अपने जो साकार वतन लोग का अपना सब काम पूरा करने के बाद फिर हम फरिश्ता होते हैं। और सूक्ष्म शरीर तो आत्मा जैसे ही प्रवेश करती है उसके बाद सूक्ष्म शरीर निर्मित हो जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए भी सूक्ष्म शरीर के साथ ही आत्मा जाती है, और कुछ समय कुछ आत्माएं रहती भी है तो भी सूक्ष्म शरीर में होती है, तो वो सूक्ष्म शरीर है।
सत्ययुग में भी सूक्ष्म शरीर होता है?
सूक्ष्म शरीर तो नेचुरल तो हो गई होगा, लेकिन उसका उसके लिए ना चिंतन होगा और ना उसके लिए कोई जानकारी करने की कोशिश संकल्प होगा
जी,
लेकिन वो सूक्ष्म शरीर के साथ ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी
जी। वैसे भी था कि देश काल परिस्थिति अनुसार श्रीमत पे चलना है, इसका भाव क्या होता है?
तो श्रीमत को तो हम देश काल परिस्थिति के अनुसार से ही डिसाइड करेंगे ना,
पर श्रीमत तो श्रीमत है ना।
नहीं नहीं श्रीमत तो दो व्यक्तियों के साथ लिए भी एक जैसी श्रीमत नहीं है। कई बार बाबा ने बोला है कि किसी को बोला है कि तुम बाहर जाते हो मीटिंग वगैरह में जाते हो तो तुम कुछ चाय वगैरह ले सकते हो, अब किसी को बोला कि नहीं ले सकते हो, तो श्रीमत भी अधिक व्यक्ति वातावरण को देख करके बाबा दी हुई है ना।
ओके अभी भाई साहब हम लास्ट क्वेश्चन है, लाइक जो आने वाला समय है यू नो, जैसे हम फ्यूचर देखते हैं उस समय पे हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ हम क्या करें?
देखो उस समय
आपका भी क्या सूक्ष्म
उस समय सूक्ष्म पुरुषार्थ ना हम कर सकेंगे और ना हमारे से होगा। सूक्ष्म जो पुरुषार्थ जो है हमको अभी करना है, और अभी का जो पुरुषार्थ ही उस समय काम आएगा। और वही जो देखो जब हमारे को कोई कर्म हो जाता है, जब हमारे वेदना होती है, उस समय हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, योग का भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पुरुषार्थ हमको जब पीसफुल टाइम है, हमारी अवस्था अच्छी है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तब हम जो करेंगे तो वो योग जो है वो उस समय हमारे को काम करेगा और हमको उस वेदना से मुक्त करेगा। हम उस समय जो है योग युक्त होकर के वेदना से मुक्त हो जाए या शरीर हो जाए, उस समय वह शरीर नहीं हो सकते हैं
जी। तो ये वैसे पुरुषार्थ क्या करना है?
तो बस उसके लिए हमको शरीरपन का है, बाबा ने जो हमको एक्सरसाइज बताई हुई है वो है, और ये सब करते रहने का है
जी।
देखो बाबा ने हमको कितनी बातें बताई हुई हैं, और उसमें किसी भी एक बात में भी हम स्थिति में स्थित हो जाएं तो उसको हमको क्या अनुभूति होगी उसको विचार करने का। तो ये जो बाबा ने हमको बताया खाली पुरुषार्थ के लिए नहीं बताया, संगम पर पुरुषार्थ ही प्रारब्ध है। कोई भी बात बाबा ने जो हमको बोली हुई है यदि हम उसको उस स्थिति में स्थित होंगे तो हमको उसकी अनुभूति होगी, प्राप्ति की अनुभूति होगी, सुख शांति आनंद की अनुभूति होगी। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये प्राप्ति को अनुभूति करने का एक माध्यम है, और वो बाबा ने हमको पुरुषार्थ के रूप में बताया हुआ है। तो संगम पर जो है पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों साथ साथ चलते हैं।
थैंक यू भाई साहब, सच्ची में जब हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ये दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होता है, श्रीमद है ही खुद को धारण करने के लिए, बहुत सुंदर बात भाई साहब। और पुरुषार्थ तो कोई फ्यूचर की बात नहीं।
अभी तो देखो, अभी तो श्रीमत अलग अलग तरह है। श्रीमत जो है बाबा ने हमको दिया हुआ है मुरली में, वो भी श्रीमत है। यदि कोई व्यक्ति जो है उसका जो टीचर है, भावना है उसके प्रति, तो उसकी बात भी श्रीमती होगी। और अभी किसी देश काल परिस्थिति में हमको बताए तो बाबा की याद में बैठ करके हम अशरीर बन के और विचार करेंगे, वो भी श्रीमती होगी। और बाबा के कमरे में जा करके बैठेंगे और फिर भी हमारे को तो श्रीमत, क्योंकि अभी जो है हमको एक हार्ड एंड फास्ट हम उसको नहीं ले सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट तो मुरली है। और कई बातों में हमको अपने को भी, हमारे को तो एक बार हम गिर गए थे तो हमारी जो है इस मायने चार पांच नंबर की जो नस जो है दब गई थी, तो हमारे को उठ के चलना भी मुश्किल हो रहा था, रात को सोना भी मुश्किल हो गया था हम को बहुत। और वो हठयोग में जो अज्ञान काल में जो अभ्यास करते थे शरीर से डिटेच हो जाने, तो हमने सोचा कि अभी शरीर से तो उस समय हम डिटेच नहीं हो सकते थे। और वो दर्द इतना होता था कि हमको उठना बैठना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बाहर हमारा ऑफिस था, उधर से जब हम 11 बजे ऐसे झुक कर गए थे घुटने वाले पकड़ के जाते थे, और रात को भी हिल भी जाते थे तो मरने जैसा हो जाता था, ऐसी स्थिति आई। तो हमने सोचा कि अभी बाबा के कमरे में हम बैठे, क्योंकि बाबा ही अभी हमारे आधार है। तो बाबा के कमरे में बैठे तो हमारे को संकल्प आया कि अभी ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हम 2000 तक की बात है, उस समय स्पाइनल का ऑपरेशन कराने में लोग डरते थे, क्योंकि स्पाइनल का ऑपरेशन में पैरालिसिस की संभावनाएं बहुत होती हैं। इसलिए हमको चंद्रिका बहन ने भी मना किया था, और डॉक्टर सोलंकी हड्डी का डॉक्टर है पालनपुर का, उसने मना किया था कि ऑपरेशन नहीं कराना है। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे को इतनी प्रॉब्लम है तो इससे अच्छा, तो बाबा कब में बैठे थे हमको संकल्प आया कि करा लो। तो हमने उसी समय उठ के बनारसी भाई फोन किया, तो बनारसी भाई ने बोला कि हम बॉम्बे जा रहे हैं, तुम चलो तुम्हारे को भी दिखा देते हैं। और बॉम्बे गए, हमने ऑपरेशन हो गया और आज हम ठीक हैं। तो हमारे को अच्छा, हमारे को देख करके वो शांताराम भाई था, उसने ऑपरेशन कराया। ये दयाराम भाई जो है बिल्डिंग वाला, वो व्हील चेयर चलने लगा था, तो उसने हमारी देख करके फिर उसने ऑपरेशन कराया। एक दुबई का भाई सुरेश था, उसने ऑपरेशन कराया, तो उनका भी तीनों का ठीक ही रहा। तो बाबा के कमरे हमारे लिए तो वही बाबा ही है, और वो हम बाबा कमरे में कभी जाते हैं तो डिसाइड करते हैं, तो हमारे लिए वही श्रीमत हो जाती है, या तो मुरली या वो। और वो हर एक अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेगा।
थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने अमूल्य अनुभवों से हमें बहुत सारी शिक्षा दी, हम सभी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
और एक बात और हम आप बोलते हैं कि किसी भी टीचर के प्रति या दादियों के प्रति या कोई किसी के प्रति भी हमारी भावना बाबा के प्रति सही भावना, और उसको हम बाबा के डायरेक्शन समझ करके करेंगे, तो हमको उसकी भी बात जो है वो श्रीमत के अनुसार ही होगी। इसका एक उदाहरण हम बताएं कि हमारे कुछ किसी भाई तो थोड़ा सा कुछ बात थी पेमेंट के बारे में, हम पेमेंट करते थे लेबर पेमेंट उसके बारे में, तो दादी के पास मतलब बात हुई, चंद्रनाथ बाबू जी भी थे और दादी भी थी, और वो हम भाई दो, तो दादी ने बोला उस समय कि दादी ने बोला कि अभी पेमेंट जो है महेश अपने रजिस्टर जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, तो वो हमने मान लिया। और वो उस भाई ने माने, फिर बाद में उस भाई ने चंद्रनाथ बाबू जी को प्रेस किया और चंद्रनाथ बाबू जी ने दादी को प्रेस किया, और दादी ने फिर हमारे बोला कि तुम उसके रजिस्टर पर पेमेंट कर दो तो भी अच्छा ही है। तो लेकिन फर्स्ट जो डिसीजन था हमने उसको ही श्रीमत माना, क्योंकि वो डिसीजन विदाउट किसी प्रेशर के था, और दूसरा जो डिसीजन आया वो प्रेशर से आया। तो इसलिए श्रीमत को भी हमको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा।
थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।